अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये परम पुण्यवान हमारे आपके जीवन के क्षण दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन प्रातःकालीन अमृत बेला के शांत वातावरण में बैठकर नित्य प्रति उन महापुरुषों के आशीर्वाद स्वरूप हम लोग भगवान की वाणी ऋषियों की वाणी का मनन चिंतन करने का जो परमेश्वर के द्वारा अवसर प्राप्त करते हैं बारंबार उन महापुरुषों का धन्यवाद और भगवान का धन्यवाद बारंबार कि हमारा आपका मन हमारा आपका तन इस प्रकार से इस दिव्य कार्य में लगा हुआ है तो ऐसे सुंदर वातावरण में हमारा जो वर्तमान का प्रसंग है षोडश अध्याय सोलहवें अध्याय का दैवी संपदा और आसुरी संपदा का हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को सात्विक ज्ञान जिसको हम लोग दैवी संपदा कहते हैं उसके द्वारा उपदेश कर रहे हैं भगवान और वर्तमान में जो हमारा विषय है वो है अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरोलुप्तम मार्दवम ह्रीह चापलम अक्रोध के ऊपर विचार चल रहा हम लोगों का क्योंकि दो ही परम शत्रु इस संसार के हैं और वो हैं काम क्रोध सारे संसार को जिन्होंने अपने वश में किया हुआ है वो हैं काम और क्रोध सारा संसार इन्हीं के वशीभूत होकर जो है पूर्णतया सुख और दुख के इस जीवन को जीने की चेष्टा करता है लेकिन जिनके अंदर परमार्थ विचार उत्पन्न होता है परमेश्वर का विचार उत्पन्न होता है फिर जब वो बार बार विचार करते हैं अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करते हैं तो उनको स्पष्ट दिखाई देने लगता है क्योंकि साधारण व्यक्ति को सांसारिक भाषा में जो आजकल का वर्तमान का समय है वो बोलते हैं स्वप्न देखना हमारा अधिकार है स्वप्न देखना क्या मानते हैं अधिकार मानते हैं यानी कामनाओं को अधिकार मानते हैं इसी प्रकार से क्रोध का तांडव आप पूरे संसार में देख रहे हैं है ना सारा संसार क्रोधाग्नि में इस समय जल रहा है हमारा एक दूसरे को नष्ट कर देने की होड़ लगी हुई है तो ये सब क्रोध और काम का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है लेकिन जब कोई परमार्थ का पथिक परमेश्वर की ओर अग्रसर होने वाला ज्ञान का पथिक विवेक दृष्टि डालता है तो उसको दिखाई देता है कि वास्तविकता में कोई दूसरा नहीं हमारे कोई दूसरे शत्रु नहीं है हमारे ही अपने जीवन में बैठे हुए दो महान शत्रु जिनका नाम है काम और क्रोध इन दोनों ने हमारे जीवन को वास्तविकता में परमात्मा से दूर कर दिया आवरण बन गए है ना कल आपको बड़े विस्तृत रूप से इस चीज के ऊपर हम लोगों ने व्याख्या की थी और उसके बाद इसी अध्याय के अंत में भगवान ने जो है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना हमारी आत्मा को नष्ट करने वाला है ना क्योंकि अभी जो हमारी अवस्था है हैं वो क्या है हमने अपने ही आत्मा के ऊपर स्वयं ही आवरण जिस प्रकार से रात्रि में विश्राम के लिए जाते समय अपने ऊपर अपने हाथ से ही हम चद्दर डालते हैं है ना अपने हाथ से ही कुछ ओढ़ने का सामान ओढ़ते हैं तो उसी प्रकार से अपनी ही आत्मा के ऊपर हमने जो है भगवान ने यहां तीसरी चीज भी जोड़ दी है कामः क्रोधः तथा लोभः काम क्रोध और लोभ तीन चीजें हो गई महाराज तीन चद्दरें हमने एक के ऊपर एक डाल दी इसका परिणाम ये हुआ कि हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो वास्तविक सत्य स्वरूप हमारी परमार्थ सत्ता है वही हमसे दूर हो गई तो इन काम क्रोध और लोभ ने हमको वास्तविकता में ऐसा ढक रखा हमारे अपने स्वरूप को ऐसा ढका हुआ है भगवान कहते हैं कि ये जो तीन शत्रु हैं दो तो महान हैं ही और इन दोनों का संग हो जाने पे तीसरा और जुड़ जाता है ना लोभ लोभ की कभी समाप्ति नहीं होती और ये हर रूप में हमारे जीवन में घुसा रहता है ऐसा नहीं कि एक ही जगह लोभ होगा हर इंद्रिय में जो जो जिस जिस प्रकार से है ना लोभ होता ना बहुत पहले जो है हमारे एक प्रेमी थे वो बता रहे थे कुलगुरु होते हैं तो कुलगुरु जो है उनके आए हुए थे है ना गृहस्थ कुलगुरु होते हैं तो उनको जो है गुजराती कुलगुरु की बात हो रही है तो सीरा बहुत पसंद था उनको, सीरा बड़ा पसंद था महाराज। तो गुजरात से जब बंबई आए तो मौसम बदला, पानी बदला, तो उनको डायरिया हो गया, डायरिया हो गया महाराज। अब यजमान के आए हैं तो मालूम है कि गुरु जी को सीरा बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्या खाएंगे, आपको तो डायरिया हो गया। बोले महाराज अच्छा है, सीरा तो बना ही लो है? लेकिन भोजन में और कुछ मत बनाना, खिचड़ी बनाना है ना। तो खिचड़ी बनाई, सीरा बनाया, तो पहले उन्होंने जो है खिचड़ी खाई, फिर उसके बाद सीरा खाया और फिर खिचड़ी खाई। अरे महाराज ये क्यों किया? बोले अगर जो है जाना पड़ा तो भी खिचड़ी निकलेगी और उल्टी हुई तो भी खिचड़ी निकलेगी, सीरा नहीं निकलेगा। इसलिए सीधे की सेफ्टी कर ली। इसको कहते हैं लोभ। क्या कहते हैं? बड़ा भयंकर है हमारा। किस किस रूप में हमारे आपके जीवन में बैठा हुआ, कहां कहां पर किस किस प्रकार से इसने हमको आपको फंसाया हुआ, किस प्रकार से हम लोभ ग्रसित होकर अपने काम और क्रोध को, आपने अपने लिए कोई चीज छिपा के रखी हो और किसी दूसरे ने उस चीज को क्या कर लिया, ढूंढ लिया, पा लिया, और परिणाम ये हुआ कि वो चीज का उपयोग उसने कर डाला, फिर उसके बाद आपको क्या होता है? क्यों भाई? काम क्रोध की भावनाएं जो हैं यही तो हैं, ये कहां से जागृत होती? इसीलिए भगवान ने यहां तीसरा भाई इनका जोड़ दिया, लोभ। जब लोभ संग में मिश्रित हो जाता है तो हम अपनी ही आत्मा के ऊपर ये तीन महान चद्दरें डाल देते हैं महाराज, और इसका परिणाम ये होता है मरते दम तक ये लोभ काम क्रोध हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए क्रोधाग्नि भगवान ने दैवी संपदा का एक बहुत सुंदर गुण है अक्रोध, बिल्कुल जो है क्रोध रहित होना, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल विशिष्ट रूप से इसको समझ लीजिए महाराज, क्योंकि क्रोध में होता क्या, मित्र को शत्रु और शत्रु को क्या समझते हैं, हाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है। तो गुस्सा जो है त्यागने योग्य है। क्यों त्यागने योग्य है? हमारे यहां जो है बचपन में पढ़ाने के लिए, राजाओं के पुत्रों को पढ़ाने के लिए एक बड़ी सुंदर पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है पंचतंत्र। उसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है, छोटे छोटे राजकुमारों को बड़े जो है बिगड़ी हुई बुद्धि के राजकुमार थे, तो उनको संभालने के लिए उन्होंने गुरुदेव के आश्रम में राजा ने जब भेजा तो उन्होंने उनके लिए सुंदर कथाओं की रचना की, और कथाओं को सुनने से जो सारे राजकुमार जिनकी बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, बिगड़ी हुई थी, वो सुधर गई। तो महाराज उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, एक स्त्री थी, उसने एक नेवला पाला हुआ था, है ना। नेवला भी एक पालतू जानवर है हमारे यहाँ, नेवला देख समझते हैं ना आप लोग, हाँ। तो सर्प का जो दुश्मन माना जाता है नेवला, सांप और नेवले की लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है, तो नेवला जो है जैसे कुत्ता पालते हैं ऐसे ही नेवले को भी पाला जाता है। उस स्त्री ने अपने घर में एक नेवले को पाला हुआ था अपने बच्चे की तरह, और उसका एक छोटा सा घुटनों के बल चलने वाला बच्चा था। प्राचीन काल था, कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था, तो वो स्त्री जो है प्रातःकाल निश्चिंत रहती थी अपने छोटे बच्चे को उस नेवले के भरोसे छोड़कर चली गई, और जाकर के महाराज पानी भर के जब वापस आई तब तक यहां मध्य में क्या निकला, एक सर्प निकला महाराज, और वो छोटे बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। तो जब वो सर्प छोटे बच्चे की ओर बढ़ने लगा तो उस नेवले ने महाराज उसके संग क्या किया, युद्ध किया महाराज उस सर्प के संग, और उस युद्ध में जो है उसने सर्प को मार दिया। कभी सर्प जीतता है और कभी नेवला जीतता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नेवला ही जीतता, जैसा लोगों का भ्रम है कि सांप नेवले की लड़ाई में नेवले को भगवान ने ये गुण दिया है कि वो सर्प को मार देता है, ऐसा नहीं है, कभी सांप भी जीत जाता है, क्योंकि ये तो युद्ध है, युद्ध में कौन जीतेगा कुछ पता नहीं, जो बलवान हो वही जीतता है। तो महाराज उस सर्प को मारने के बाद वो नेवला बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने आज अपनी मालकिन के बच्चे की क्या की, रक्षा की, इतना खुश हो गया, क्योंकि ये आपने देखा होगा ना कुत्ते को आप रोज एक बिस्किट खिलाओ तो जैसे ही कुत्ता आपको देखेगा वैसे ही क्या करना शुरू कर देता है, प्रसन्नता व्यक्त करने लगता, पूंछ हिला हिलाकर आपके सामने लौटने लगेगा, आपके पैरों में लिपट जाएगा। तो इसी प्रकार से जीव अपनी प्रसन्नता हमारी आपकी तरह बोल के नहीं बता सकते, लेकिन शरीर के हाव भाव से वो अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो जैसे ही महाराज वो स्त्री जल लेकर के आई, वैसे ही वो नेवला दरवाजे पर अपनी मालकिन को ये शुभ संदेश देने के लिए कि मैंने तुम्हारे बच्चे की क्या की है, रक्षा की है सर्प से, वो महाराज दरवाजे पे ही उछल उछल कर कूद कूद कर अपनी मालकिन का स्वागत करने लगा। जब उस मालकिन ने देखा ये तो पूरा रक्त से सना हुआ है, सर्प का सारा रक्त उसके शरीर में लगा हुआ था, एकाएक उसका दिमाग महाराज गर्म हो गया। गर्म हुआ, उसने कहा इसने तो आज मेरे बच्चे को क्या कर लिया, मैं इसके भरोसे छोड़ कर गई थी, इसलिए क्योंकि यहां दूसरा कोई था ही नहीं, मेरा बच्चा और ये, इसके अलावा यहां तीसरा कोई था ही नहीं महाराज। ऐसा विचार करके सीधा उसका दिमाग गया कि आज तो इस नेवले ने मेरे बालक को समाप्त कर दिया। ऐसा विचार आते ही कि मैं अंदर जाऊंगी, मेरा बालक तो मर चुका है। उसने जो है कितना भयंकर नेवले के ऊपर उसको क्रोध आया, नेवला उछल उछल कर मालकिन का स्वागत कर रहा है और उसका क्रोध बढ़ता चला जा रहा, और इतना क्रोध बढ़ा कि उसने पानी का मटका उठाकर नेवले के ऊपर पटक दिया और परिणामतः वहीं का वहीं नेवला जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। भागी दौड़ी महाराज अपने बच्चे की तरफ की, देखें क्या स्थिति है उसकी, क्या किया इसने। जब वहां जाकर देखा तो छोटा सा बच्चा अपने पालने में खेल रहा था, उसके बगल में पड़ा था मरा हुआ सांप महाराज। अब तो वो फूट फूट के रोने लगी कि जिसने मेरे बच्चे की रक्षा की उसी की मैंने अपने हाथों से क्या कर दी, हत्या कर दी महाराज। ये किसका काम था, क्रोध का काम था। अगर थोड़ी देर के लिए वो विचार कर लेती तो उस सुंदर नेवले की हत्या के दोष से क्या हो जाती, जिसने उसके बच्चे की रक्षा की उसी को ही उसने क्रोधाग्नि के कारण क्या कर दिया, मार दिया महाराज। और रावण तो साक्षात उदाहरण है चीज का, है क्रोधाग्नि में आकर महाराज विभीषण को लात मारकर बाहर कर दिया और यही उसके नाश का क्या बन गया, कारण बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है अक्रोध, क्रोध जो है हमारे अंदर ऐसा जहर घोलता है कि हमको शत्रु मित्र कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या माता क्या पिता क्या गुरु, है ना, अक्सर आपने सुना होगा गुरु हंता, गुरु की हत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग, बाकी की तो बात क्या की जाए। पति पत्नी में तलाक होता है लेकिन गुरु के संग तलाक नहीं होता, ये कैसा रिश्ता है महाराज गुरु शिष्य का, जो बिल्कुल भी कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन वहां पर भी क्रोध जो है ऐसी भयंकर क्या पैदा कर देता है, दरार पैदा कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, कभी आप अपने जीवन को पढ़ के देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी विशेषता अपने जीवन में दिखाई देगी कि आपने अपने जीवन के जो बहुमूल्य निर्णय लिए हैं वो सब क्रोध में ही लिए हैं। जितने भी निर्णय हम लेते हैं वो गुस्से में ही आकर लेते हैं, बस आज से उससे नहीं मिलना, आज से उससे बात नहीं करनी, आज से उससे ऐसा नहीं करना। और इसका परिणाम ये होता उस स्त्री की तरह, जैसे उसने अपने ही सहायक की अपने ही हाथों से क्या कर दी, हत्या कर दी। इसी प्रकार से हम बहुत सारे निर्णय ले बैठते हैं और उसके बाद उस क्रोध के ही सहारे हम जो हमारे शत्रु हैं उन्हीं को अपना क्या बना लेते हैं, मित्र मान लेते हैं, और परिणामतया हमारा जीवन आत्महत्यारे की तरह बिल्कुल कैसा हो जाता, अंधकारमय हो जाता है। होना चाहिए ज्ञान का प्रकाश, लेकिन हमारा शांत भाव से भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण देखो क्या अवस्था है, विक्षिप्त है अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता सुनते समय अर्जुन की अवस्था क्या है, विक्षिप्त हो रहा, गुस्सा आ रहा है उसको कि क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई दुर्योधन की, अपने ही रिश्तेदार नातेदारों को मारने के लिए हम एकत्रित हुए है ना। लेकिन बड़ी भगवान ने देखो कितनी शांति से उस समय गीता का उपदेश दिया कि पहले सत्य को समझ लो, और सत्य को समझने के बाद उसके बाद जो भी कदम उठाना है वो उठाओ। तो अक्रोध की अवस्था में पहले निर्णय लेना चाहिए, निर्णय जो भी लो नियम होना चाहिए कि मैं कोई भी निर्णय क्रोध की अवस्था में नहीं करूंगा। लौकिक जीवन को सुखी करने के लिए, सांसारिक जीवन को सुखी करने के लिए भी अक्रोध की आवश्यकता है, और अध्यात्म में तो क्रोध की कोई गति ही नहीं है। लेकिन हमारे यहां बहुत से अपवाद देखे जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ रुद्र है, माने ही रुद्र जाते हैं महाराज, कि तीसरा नेत्र जब खुलता है तो क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है महाराज। हमारे यहां एक ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं महाराज, और उनकी क्रोधाग्नि के बारे में सब लोग जानते हैं महाराज, कि जिसके ऊपर कुपित तो हो गए उसको वो श्राप देते ही देते हैं महाराज। अब समस्या ये है कि क्रोधी व्यक्ति की बात सत्य कैसे होती है। विचारणीय विषय तो ये है कि अगर दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं तो उनका कहा हुआ सत्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्रोध करेंगे, जब भी आप कामना करेंगे, जब भी आप लोभ करेंगे, आपकी की हुई तपस्या क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नियम है संसार का, क्या है नियम है महाराज, शाश्वत नियम है, सनातन नियम है। क्रोध करने पर, कामना करने पर हैं, ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे बहुत सारी तपस्याओं को नष्ट कर देती हैं महाराज, है ना। जो बहुत बड़ा तपस्वी हो, वो भी कामना जो है उसको खा जाती है, क्रोध उसको खा जाता है, लोभ उसको खा जाता है। तो दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी होने पर भी महाराज उनका तप क्यों नष्ट नहीं होता। देखो, वरदान देने में सक्षम है, कुंती को वरदान दिया कि नहीं दिया, जाओ तुमको जो जिस देवता को याद करोगी वही देवता जो है तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा। उसके बाद जिसको भी महाराज उन्होंने श्राप दिया, तुरंत जो है श्राप क्या होता है, फलीभूत होता है। तो क्रोध का एक रूप ये भी देखा जाता है, महापुरुषों के अंदर देखा जाता है, और जो है भगवानों के अंदर देखा जाता है। लेकिन जो समझने वाली बात है, ये क्रोध ठीक उस प्रकार से है जिस प्रकार से बच्चे का क्रोध है ना। बच्चे को भी क्या आता है, जैसे बच्चे को माता पिता के ऊपर क्या आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता, छोटी छोटी बातों के लिए अपने माँ बाप के ऊपर एक अबोध बालक जो है गुस्सा हो जाता है हमारा, है ना। तो क्या इसका मतलब उसके हृदय में अपने माता पिता के प्रति कलुषता आ गई, वो श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहती है और झगड़ा भी करता रहता है। हमारे क्रोध में और उस बच्चे के क्रोध में यही अंतर है, हम ऊपर से तो हंस के बात करते हैं लेकिन अंदर अंदर क्या जलती है, क्रोधाग्नि जलती है, इसलिए हमारा तप हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस बच्चे की तरह दुर्वासा ऋषि का क्रोध, भगवान भोलेनाथ का जो क्रोध दिखाया गया, ये वो बच्चे वाला क्रोध है। जैसे वो बच्चा अपने माता पिता से गुस्सा होकर झगड़ा करके भी महाराज अपने माता पिता का ही रहता है, उसी प्रकार से ये महापुरुष जिनको हम दुर्वासा ऋषि के नाम से जानते हैं, या भगवान भोलेनाथ, या बहुत सारे ऐसे जो महापुरुष हुए जिनको बिल्कुल क्रोधातुर अवस्था में देखा जाता है, शिरडी के साईं बाबा थे जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माने जाते हैं, उनको महाराज ऐसा भयंकर गुस्सा आता था कि सामने जो मिलने वाला आया उठ के भाग जाता था महाराज, घबरा जाते थे लोग, इतना लोग पूछते थे इतना गुस्सा क्यों आता है इनको। तो ये महापुरुषों का जो है रूप जब देखते हैं लोग तो उसका अनुसरण करने लगते हैं ना, बहुत से हम लोगों ने देखा ऐसा। तो लेकिन हमारे गुस्से में, उनके गुस्से में या क्रोध में ये जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि उनका अंतःकरण कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण का क्रोध अलग चीज है और अशुद्ध अंतःकरण का क्रोध अलग चीज है, क्योंकि वहां पर आप अपने परमेश्वर से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र ने, गीता शास्त्र ने आपसे कहा अक्रोध हो जाओ, यानी क्रोध का दूर से ही क्या कर दो। अगर गुस्सा करना भी है तो पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लो, उसके बाद फिर खूब गुस्सा करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, शुद्ध अंतःकरण होने के कारण ये गुस्सा तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, फिर अंदर से गुस्सा नहीं करोगे, कहां से करोगे, बाहर की दुनिया को बाहर छोड़ दो, है ना। जब बाहर की दुनिया को बाहर छोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा के ऊपर आवरण नहीं आएगा। इसीलिए महाराज दुर्वासा ऋषि का क्रोध का श्राप देने पर भी तप नष्ट नहीं होता है, अन्यथा तो थोड़ा सा गुस्सा हमारी बहुत सारी तपस्या को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार से 2 किलो दूध को फाड़ने के लिए नींबू की 4 बूंदें पर्याप्त होती हैं, उसी प्रकार से अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा किया गया क्रोध हमारे बहुत सारे शुभ कार्यों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसको भली भांति समझ लेना चाहिए, है ना। दैवी संपदा का गुण है महाराज जी, है ना। तो हम लोग कभी कभी महापुरुषों की नकल करने की चेष्टा करते हैं, हमने देखा है बहुत जगह इस तरीके का। गुरु गुस्सा करते हैं तो शिष्य भी गुस्सा करने लगते, अरे पहले गुरु तो बन जाओ, हैं? जब गुरु की अवस्था में पहुंच जाओ तब तुम करना, पहले उनकी अवस्था को धारण तो करो, अंतःकरण तो शुद्ध करो। अंतःकरण तो हमारा अशुद्ध है और आचरण करते हैं हम ऋषि मनीषियों का, तो यही हमारे लिए अपनी ही आत्मा के ऊपर आवरण का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। उसके बाद दैवी संपदा का एक बहुत सुंदर गुण है जिसका नाम है त्याग, बहुत आवश्यक है। बिना त्याग के आपको अध्यात्म में कुछ भी मिलने वाला, यानी जितने भी ये गुण है ना, इनमें से एक भी छोड़ मतलब कोई ऑप्शनल नहीं है कि ये छोड़ा जा सकता है। त्याग, अब जब समस्या आती है त्याग, जब भगवान कहते त्याग को आपको यदि अध्यात्म में आत्मज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमारा त्याग भी करना है। अब समस्या ये है महाराज, अगर सब महात्मा बन जाए, एक सज्जन मेरे पास आए बोले महाराज सब महात्मा बन जाए तो संसार कैसे चलेगा। मैंने कहा तुम हो तो एक अकेला काफी है। क्यों भाई, जो इतना चिंतित है संसार कैसे चलेगा, अकेला ही काफी है सारी नैया संभालने के लिए। तो पहली बात तो महाराज इतना आसान नहीं कि सब संन्यास ले लें, इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो कहने मात्र को है, लेकिन अगर सब ले लें फिर तो महाराज मजा ही आ जाए, कहने ही क्या। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बीच में महाराज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों और बड़े बड़े धन का झगड़ा होता है, लेकिन अगर आप झोपड़ी में रहने वालों के मध्य में पहुंच जाओ तो महाराज वहां पर अल्मोनियम के एक छोटे से बर्तन के लिए आपस में क्या हो जाती है, ऐसा भयंकर युद्ध होता है, मारा मारी हो जाती है महाराज, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। किसके लिए, एक छोटा सा महाराज अल्मोनियम का पात्र हो, कटोरा हो, गिलास हो, उसके लिए ही आपस में युद्ध कर बैठते हैं महाराज। तो समस्या ये है त्याग कहां से करेगा वो, जब एक साधारण सी 2 रुपए की चीज जीवन की हत्या का कारण बन रही है और ये पूरे नीचे से ऊपर तक, अमीर से लेके गरीब तक महाराज, है ना। जो लोभ की, लोभ का उल्टा ही तो त्याग है ना, अगर आप त्याग करेंगे तो हमारे अंदर का लोभ क्या हो जाएगा, जब लोभ नहीं होगा तभी तो आप कुछ त्याग कर सकते हैं, और जब लोभ होगा तो त्याग करना संभव नहीं है। तो लोभ का जो उल्टा गुण है वो है त्याग, और त्याग जो है समस्या ये है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए कैसे त्याग किया जाए। और त्याग के बगैर देखो दो चीजें हैं, एक है दान और एक है त्याग। शंकराचार्य जी कहते हैं बिना त्याग के ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है, तो संन्यास को अति आवश्यक बताया है महाराज। उन्होंने कहा कि त्याग के बगैर बिल्कुल भी ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। एक होता है दान और एक होता है त्याग, है ना। दान में तो कुछ अंश निकाला जाता है कि कुछ अंश निकाल दिया वो दान कहलाता है, लेकिन त्याग का मतलब तो होता है संपूर्णता से किसी चीज को छोड़ देना। जैसे कोई राज्य का राजा है, जैसे हमारे यहां सबसे बड़ा उदाहरण, एक ही बार भागवत सुनने पर राजा परीक्षित को क्या हो गया, ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, और मुक्त हो गए महाराज एक ही बार। कोई रोज नहीं सुखदेव जी आकर उनको भागवत सुनाते थे महाराज, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया, सब राजमहल सब कुछ छोड़कर कुशासन बिछाकर महाराज गंगा जी के तट पर बैठ गए, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूं, ब्राह्मण के श्राप को ग्रहण करना चाहता हूं। जब ऐसा निर्णय उन्होंने लिया तब महाराज एक ही बार में भागवत श्रवण ने उनको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, मुक्त कर दिया महाराज, और हमने तो ना जाने कितने भागवत क्या कर डाले, सुन डाले महाराज, और ना जाने आगे हम कितने सुनने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ महाराज। अगली भागवत किसकी होगी ये बताओ अगला सुखदेव कौन है, हैं? तो ये है महाराज, बिना त्याग के ज्ञान का भी हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला, हाँ ये त्याग रूपी गुण है। तो इस रहस्य को भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहां एक है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है तत्व ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान को कैसे पाया जाए, बोले महाराज अगर तुमको तत्व निकालना आ गया। बोले महाराज इस गृहस्थ जीवन में रहकर हम त्याग कैसे करें, उन्होंने कहा भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने, महाराज आपने इतवार के दिन आप लोग बारहवें अध्याय का पाठ करते हो है? और बारहवें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागच्छान्तेरनन्तरम्। देखो भगवान ने त्याग शब्द को एक ही श्लोक में आपको समझा दिया। श्रेय ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। किस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्यों भाई? व्यर्थ के अभ्यास से, जैसे मैं नित्य उठकर पाठ करता हूं, मंदिर जाता हूं, बिना नहाए जो है नाश्ता नहीं करता, ये बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिनकी हमको आदत पड़ चुकी है। इस व्यर्थ के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? सत्य असत्य का ज्ञान श्रेष्ठ है। जिसने ये निर्णय कर लिया जीवन में परमात्मा ही श्रेष्ठ है, ये संसार वास्तविकता में क्षणिक है, ये केवल जो है माया रूप प्रतीत हो रहा है, ऐसा निर्णय कर लेने वाला ज्ञानी पुरुष उस अभ्यास करने वाले नित्य प्रति के, जो नहा धोकर पूजा पाठ कर भगवान का नाम लेकर नित्य का जो अभ्यास उनका हो गया, आपने देखा ना लोग चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, क्योंकि पाठ आपको क्या हो चुका है, याद हो चुका है ना, और आप पाठ करते रहते हैं, आप बात भी करते रहते हैं। हमने देखा है माताएं जो है घर में पूजा भी करती रहती हैं, लोगों से बातें भी करती रहती, पाठ भी चलता रहता है, ये क्या कहलाता, ये अभ्यास कहलाता है, और ये अभ्यास हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। खाली बैठकर यदि आप ये निर्णय लेने में सक्षम हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठ है और ये संसार क्षणिक है, ऐसा निर्णय अगर आपके हृदय में जम रहा है तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते। यदि आप 24 घंटे इस तत्व का चिंतन कर सकते हैं कि परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, यदि आपके हृदय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और निरंतर आपकी अंतःदृष्टि परमेश्वर को निहार रही है, तो ये ध्यान कहलाता है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में, शमशान भूमि हो या विवाह उत्सव हो या किसी भी प्रकार की अवस्था हो, हर जगह जाकर आपको अपने आप को क्या करना चाहिए, परीक्षण करके देखना चाहिए कि क्या हर जगह मेरी बुद्धि एक परमेश्वर को ही निहार रही है। इसको ध्यान कहते हैं, इसको आत्मचिंतन कहते हैं, इसको परमार्थ चिंतन कहते हैं। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है जो नित्य निरंतर परमेश्वर का चिंतन कर रहा है, लेकिन अभी जो है उसके अंदर ये सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं आया। कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुण? भगवान कहते हैं जहां ध्यानात् कर्म फल त्यागा, 24 घंटे ध्यान करने से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, जो बहुत 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 कठिन है। हम एक छोटे से भी कर्म के फल को त्याग नहीं कर सकते हैं महाराज। साधारण सा कर्म फल भी आप त्याग नहीं कर सकते, असाधारण की तो बात ही छोड़ दी जाए महाराज। केवल केवल अगर बंबई में कोई आपको 4 फुट जगह दान दे दे, फ्री में आपको दे दे, केवल कितनी? 4 फुट जगह। क्यों भाई, छोड़ दोगे? 50,000 रुपए 1 फुट की कीमत है, कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की जमीन अगर आपको कोई दे दे तो कोई छोड़ देगा? कर्म फल का त्याग इतना आसान नहीं है महाराज, बड़ा कठिन काम है। साधारण सा कर्म का फल भी हमारे इस गहनता से चिपक जाता है महाराज, और इसीलिए हमारे यहां शास्त्र, श्रुतियां, स्मृतियां सब कहती हैं, बड़े बड़े धैर्यवान भी त्याग के सामने क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं। जहां पर कर्म फल त्याग की बात आती है, वहां पर जो है युधिष्ठिर का उदाहरण आप देखो। युधिष्ठिर, सारे पांडव जब जो है स्वर्गारोहण की ओर चले, तो सारे पांडव महाराज एक एक करके सब क्या हो गए? गल गए महाराज, सब गल गए। अंत में जो है युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच गए सशरीर, हैं? और महाराज उनके संग एक कौन था? कुत्ता था महाराज। जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा जाने का अधिकार है मगर इस कुत्ते का नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये हमारी शरणागति में है, इसलिए ये पहले जाएगा, बाद में मैं जाऊंगा। बोले, या तो कुत्ता जाएगा या तुम जाओगे। बोले, ये कुत्ता ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, सुनने में कहानी तो बड़ी साधारण सी अच्छी सी लगी है, युधिष्ठिर बड़े अच्छे थे। अब जरा एक बात बताओ, क्या तुम किसी कुत्ते के लिए स्वर्ग का सुख त्याग सकते हो? क्यों भाई, तुमको अगर स्वर्ग में अंदर जाने के लिए एंट्री पास मिल जाए, हैं, जहां मिलता नहीं किसी को जाने को, अगर ऐसा सुख प्राप्त हो जाए महाराज, हैं, तो ऐसे सुख को किसी एक साधारण से निरीह प्राणी के लिए, हैं, एक कैसा प्राणी है वो, हैं, निरीह प्राणी है महाराज, कुछ भी तो नहीं है, हैं, जिसको हम लोग तिर्यग योनि कहते हैं, शास्त्र की भाषा में जड़ योनि कहते हैं, उसके लिए अपने स्वर्ग के सुख का युधिष्ठिर ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया महाराज। जरा विचार करके देखो, हजारों उदाहरण इस प्रकार के आते हैं हमारे यहां शास्त्रों में, जहां पर जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया उन्होंने महाराज अपने बड़े बड़े सुखों को, राजा प्रथु का हमारे यहां उदाहरण आता है कि जिस समय इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा और राजा प्रथु जो है 100वां अश्वमेध यज्ञ करने लगे महाराज, और जिसको करने के पश्चात उनको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती, भगवान उनके जो है यज्ञ मंडप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा प्रथु तुम्हारा कार्य जनता की सेवा करना है, न कि इंद्रासन है, इसलिए इस 100 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फलों को क्या कर दो? त्याग दो। भगवान ने कहा और राजा प्रथु ने उसी समय क्या कर दिया? विचार करने नहीं गए कि मैं अपनी जो है रानियों से मंत्रणा कर लूं, मैं अपने पुत्रों से मंत्रणा कर लूं कि भाई मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, हैं? कोई मंत्रणा नहीं, जिसको कहते हैं स्वनिर्णय, अपना निर्णय था उनका। और देखते ही देखते महाराज राजा प्रथु ने एक से एक क्षण के भीतर उसी समय जो 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रहे थे, उस संकल्प का ही उन्होंने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। क्योंकि 100वां यज्ञ खंडित हो गया तो महाराज उनके स्वर्ग का इंद्रासन का रास्ता हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त तो हो गया। इस फल का परिणाम क्या मिला उनको? इस त्याग का परिणाम क्या मिला? क्यों भाई, जब आप इस प्रकार का त्याग कर दोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? अरे उसका फल मिलेगा आत्मज्ञान, उसका फल मिलेगा परमेश्वर। राजा प्रथु को क्या मिला जो इंद्र को नहीं मिलता? इंद्र किसका राजा है? देवताओं का राजा है, सुखों का राजा है, भगवान का राजा नहीं है। और त्याग करने वाला तो महाराज भगवान का राजा बन जाता है। पाछे पाछे हरि फिलें कहत कबीर। हाँ, कबीरदास को बुलाया राजा ने, बोले कबीरदास तुम्हारे दोहे इतने बढ़िया लगते हैं, मांगो क्या मांगते। उन्होंने सोचा कबीर कहेगा, महाराज मैं बड़ा गरीब जुलाहा हूं, 2-4 गज जमीन हमको दे दो महाराज, हैं, जिससे मेरा पेट पल जाए। राजा ने ये सोचा था, बोले महाराज आप क्या दे सकते हो, सुई लगी रहती थी उनके कपड़ों में, महाराज ये लो सुई रख लो और ये अगले जन्म में मुझे दे। हंसने लगा राजा, बोले कैसी बात करते हो यार, इस सुई मैं अगले जन्म में तुमको कैसे दे सकूंगा। बोले महाराज जब आप कुछ अपने संग ले नहीं जा सकते तो हमको आप क्या दोगे, इसलिए आप अपनी संपदा अपने पास रख के खुश रहें, मैं अपने दोहों में ही क्या हूं, प्रसन्न हूं, कुछ नहीं चाहिए कबीर। इसलिए कबीर कहते हैं कबीरावन निर्बल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरें कहत, त्याग करने वाले को इस प्रकार से परमेश्वर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ध्यान देना, त्याग करके क्या मिलता है, भगवान, और लोभ करके क्या मिलता है, लोभ करके मिलता है सुखों का भंडार, और सुखों का भंडार देता है बीमारियां। जो जो सुख बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों तुम्हारे अंदर बीमारियों का भी क्या होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। क्योंकि शरीर है ना, ये इस शरीर को, मशीन को जितना दुरुस्त रखोगे, क्यों भाई, उतना ही क्या रहेगा, उतना ही दुरुस्त रहेगा। और इस शरीर को जितना आराम पसंद बना दोगे, सुखों के ढेर में ले जाकर खड़ा कर दोगे, उतना ही ये शरीर क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहां त्याग दैवी संपदा का एक बहुत बड़ा क्या है, गुण है। मीरा ने कृष्ण को पाया क्या करके, राजमहलों का परित्याग करके। महाराज इतने एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है। महाराज त्याग दिया अपने पिता के कहने पर, नचिकेता ने महाराज साफ त्याग दिया, बोले जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, साफ छोड़ के चले गए। विचार नहीं किया कि भविष्य क्या होगा, है मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। तो जब जिस समय हमारे अंदर कर्म फल के त्याग की भावना आती है, जब हम कर्म फलों को त्यागना सीख लेते हैं, यानी हमने आपका जो भी दिन प्रारंभ हो उस दिन आपको ये सोचना है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, आज ही मेरा जन्म हुआ है, ये कर्म फल त्यागी का जीवन कहलाता है। और अगर आपको ये होश है कि मैं इतना कर चुका हूं, इतना अभी मुझे और करना, इतना प्राप्त कर चुका हूं, इतना प्राप्त करना है, अगर इस भावना से ग्रसित हैं, तो महाराज कभी भी आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए नित्य प्रति सुबह उठकर आपको यही विचार करना है कि मेरा जन्म आज ही हुआ है और आज ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, आज से ही मेरा जीवन प्रारंभ हो रहा है। इसको कहते हैं कर्म फल त्याग, यानी पिछला जो कुछ भी है वो सब आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, चाहे वो पुण्य हो और चाहे वो पाप हो। अपने जन्म को आज ही जानो, अभी से जानो, है ना। इसीलिए भगवान को सद्योजात कहा जाता, भगवान भोलेनाथ का एक नाम क्या है, सद्योजात, सद्या है ना, तत्क्षण जन्मा हुआ, नित्य अभी जन्म हुआ, और अभी कभी समाप्ति नहीं होता, अभी अभी बढ़ता जाएगा, करते जाओ अभी अभी होता जाएगा। ये भगवान भोलेनाथ के नित्य नूतन अवस्था का परिणाम है। तो इसी प्रकार से हमको भी बनना पड़ेगा। और तुम ये अगर मान बैठे हो कि इतना मैं कर चुका हूं, इतना मुझे और करना है, इतने सारे जो बुद्धि में तुमने ढेर लगा रखे हैं, तो भगवान कहते हैं कि भूल जाओ, तुमको कभी शांति मिलने वाली है। क्यों भाई, अरे आपके सिर के ऊपर 40 किलो का गट्ठर रखा हो तो क्या आपको शांति मिल जाएगी? शांति कब मिलेगी, जब आप उस गट्ठर को उतार कर नीचे रख दोगे, बड़ा आराम मिलेगा महाराज, आपकी गर्दन को बड़ा आराम मिलेगा, आपके शरीर को बड़ा आराम मिलेगा। इसलिए ये जो भूतकाल का गट्ठर है उसको उतार के क्या कर दो, फेंक दो महाराज, हमने कुछ भी नहीं किया है, आज से ही मेरा जीवन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, अगला दिनों फिर आज से ही प्रारंभ हुआ। और अगर तुमने ये सोच लिया गा, इतना पढ़ चुके हैं, इतना कर चुके हैं, इतना पूजा कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतने मंत्र जप लिए, इतने बाकी हैं, अगर इतने सारे ढेर तुमने लगा रखे हैं नाना प्रकार के धार्मिक कर्मों के, है ना, क्योंकि हम लोग तो यहां परमेश्वर के लिए आए हैं, परमेश्वर के प्राप्त करने की अवस्था को समझने के लिए आए हैं, अपने भूले हुए पते को ढूंढने आए महाराज, अपना घर ही हम भूल गए हैं कि हमारा अपना वो विशाल स्वरूप है स्वमृतम अस्मि, अपने आप को अमृत कुंड के रूप में त्रिशंकु ऋषि कैसे देख रहे हैं और हमको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इतना सुनने के बाद भी हमारे जीवन में मृत्यु भय कैसे बैठा हुआ है, सको। हम अपने आप को आज भी मरने जीने वाला क्यों मान रहे हैं? ये अशांति क्यों है? क्योंकि हमको कर्म फल को त्यागना नहीं आया। बड़े से बड़ा कर्म करके उसको त्याग दो महाराज। इसके बदले में भगवान पूछे तुमको कुछ चाहिए तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये कब निकलेगा? जब आपके अंदर बड़ी साधारण सी चीज जो आप लोगों ने वेदांति की क्लास में रट रखी है ना, जैसे ही आपसे कोई विवेक की परिभाषा पूछेगा कि विवेक का मतलब क्या होता है, तुरंत आप फटाक से जवाब दोगे रटा हुआ क्या। हाँ देखा, रटा हुआ सत्या सत्य विवेक। कैसे रटा हुआ है? लेकिन इसका बोध नहीं है हमको। अगर बोध हो जाएगा तो ये असत्य सत्य दिखाई देगा, लेकिन अभी तो यही असत्य ही हमको क्या दिखाई दे रहा है? सत्य दिखाई दे रहा है। और जो सत्य स्वरूप हमारे अंदर तिल में तेल की तरह, लकड़ी में अग्नि की तरह, हैं, दूध में घी की तरह अंदर बैठा हुआ, वही हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये कब होगा? जिस दिन हमको त्याग करने की क्रिया आ जाएगी महाराज। राजा परीक्षित की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, नचिकेता की तरह, कितने उदाहरण हैं, एक दो नहीं हजारों। और सीधी सी बात है, अगर हनुमान जी के पास जाओ इससे बड़ा तो त्याग दिखाई नहीं देता। भगवान राम ने हनुमान जी को क्या दिया बताओ? क्या दिया है? कुछ महल दिया, द्वार दिया, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया महाराज। सबके महल थे, हनुमान जी के घर का पता है कोई? बालकेश्वर बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? क्यों भाई? अरे रात में, आज मान लो अगर रात में भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं और बोले बताओ बेटा मैं तुमको बालकेश्वर में एक पूरी बिल्डिंग देना चाहता हूं, मना कर दोगे? भगवान जाओ यार यहां से, मुझे सुबह सत्संग में जाना है, निकलेगा मुझे? बोले बालकेश्वर में बिल्डिंग? बोले विश्वास ही नहीं होगा, वहीं मर जाएंगे। बोले फ्लैट मिलना मुश्किल, आप पूरी बिल्डिंग देने जा रहे हो, सुन के ही बेहोश हो जाएंगे। कल प्रेमपुरी वालों को बताऊंगा जाके मुझे बिल्डिंग मिली। तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो साधारण चीजें ही हमसे त्यागी नहीं जाती महाराज, कहीं असाधारण मिल जाए तो उसके त्याग की तो कोई संभावना ही दिखाई नहीं देती है। लेकिन शनय शनय, इसीलिए हमारे यहां गृहस्थ जीवन है, कर्म में जीवन जो है, गृहस्थ जीवन जिसमें आपको कर्म करना ही करना है, और वहीं से आपके त्याग की कहानी शुरू होती है। जो भी कर्म करते जाओ तत्क्षण उसको भूलते जाओ, अगले दिन सुबह उठो, ये तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए कि बस आज ही मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है, इसके पहले का सारा जीवन सब नाटक मात्र था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, चाहे मैंने शुभ कर्म किए या अशुभ कर्म किए, दोनों का जिस दिन आप परित्याग कर देंगे उसी दिन आपको गृहस्थ जीवन में ही परम शांति की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको कोई अलग करने वाला नहीं है। उसके पश्चात भगवान ने जो है वही त्याग का ही फल है शांति, उसके ऊपर जो है विचार किया है कि शांति जो है, हाँ बड़ा समझने वाली चीज है कि वास्तविकता में शांति जो है भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगी या शांति होने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? क्यों भाई, क्या है आप लोगों का अनुभव है, भगवत प्राप्ति के बाद शांति होगी या शांति के बाद भगवत प्राप्ति होगी? हैं? अब जिसको शांति मिल गई उसको भगवान क्या करना है? क्यों भाई, अच्छा शांति मिल जाए तो भगवान चाहिए? हैं? तो भगवान चाहिए तो इसका मतलब तो अभी शांति बड़ी समस्या है। इसी का नाम है अध्यात्म महाराज, और इसी का नाम है अनुभूति। जब तक आपकी अपनी अनुभूति नहीं होगी, इन रटे रटाए उत्तरों से कुछ मिलने वाला, तो इसलिए इसकी चर्चा प्रेम से कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।